ਲਕਸ਼ਣਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈਤੀ ਜੈਤੀ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣ ਪਦੋਂ ਕੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਰਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਪਦ ਕਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੋ ਵਿਰਤੀ ਕਹੀਏ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰਤੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਤੀ, ਦੂਜੀ ਲੱਖਣਾ ਵਿਰਤੀ। ਅਵਤਾਰ ਕਾ ਲਕਸ਼ਣ ਅਵਤੀ ਰਾਸ਼ਤੀਨਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤ੍ਰੇਤੀਅਸ ਅਵਤਾਰਾਂ। ਪਰਾਗ ਭਾਵ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਨਿਆਇਕ ਕੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵਾ ਸਾ ਪਰਾਗ ਭਾਵਾ। ਅਤ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਰਾਗਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਰੋ ਕਾਰਜ ਕੇ ਪਰਾਗਾ ਭਾਵ ਸੂਕਸ਼ਮ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੇਲ ਕਾ ਪਰਾਗਾ ਭਾਵ ਤਿਲੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਦਿਉਤ ਮੈਂ ਯੁਵਾ ਵਿਅਸਨ ਮੈਨੇ ਐਬ ਖੋਟੀ ਆਦਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮੈਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ। ਸ਼ੱਕ ਪਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਰਥ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਉਸ ਪਦ ਕਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸ਼ੱਕ ਜਾਣ ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਅਰਥ ਕੋ ਵਾਚ ਅਰਥ ਵੀ ਕਹਿਤੇ ਹਨ। ਵਾਚਕ ਵਾਚਕ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਨਾਬਣੇ ਵਾਲੇ ਬੋਧਕ ਪਦ ਕੋ ਵਾਚਕ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਵਾਚ ਪਦ ਕੇ ਅਰਥ ਵਸਤੂ ਕੋ ਵਾਚੇ ਕਹਿਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਕੋ ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਕਹੇ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਪਦ ਕੇ ਅਰਥ ਕਾ ਪਦ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਦ ਕਾ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਕਹੀਏ ਲਖਣਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਪਦ ਕੇ ਬਾਚ ਅਰਥ ਸ਼ੱਕ ਕਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਕਹੀਏ ਮਲਾਪ ਸੋ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਸੰਬੰਧ ਲਖਣਾ ਕਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਤੀਨ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਹਤੀ ਅਜਹਤੀ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਤੀ ਜਿਸ ਪਦ ਕੋ ਸੁਣਤੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਦ ਕੇ ਅਰਥ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਦ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਘਾਟ ਪਦ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਘੜੇ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲ ਪਦ ਸੇ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਿਆਨ, ਅਗਨੀ ਪਦ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਦ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਪਦ ਕੇ ਅਰਥ ਵਸਤੂ ਕੇ ਸਮਝਣੇ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਤੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਗਨੀ ਪਦ ਮੈਂ ਅੰਗਿਆਰ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਅਰਥ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਕੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਵਾਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬੰਨ ਦੇਣੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਉਤੇਜਕ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਅਗਨੀ ਕੋ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਨੀ ਕੇ ਸੇਕ ਕੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੋ ਉਤੇਜਕ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਬੰਨੀ ਅਗਨੀ ਅਲੀਕ ਮਨ ਝੂਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਦਕ ਬਾਨ ਜਲ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਾਰੀ ਆਦਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਪਦ ਕੇ ਬਾਚ ਅਰਥ ਕੋ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਚ ਅਰਥ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਾ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਪਦ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੈਂ ਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਪਦ ਕੇ ਵਾਚ ਸਹਿਤ ਵਾਚ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾ ਜਾਂ ਪਦ ਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਦ ਮੈਂ ਅਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਾ ਸ਼੍ਰੋਣ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਣ ਪਦ ਕੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵਿਖੇ ਅਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਦੋਂ ਕੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਾ ਤਿਆਗ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣ ਹੀ ਕਹੀਏ ਹੈ ਔਰ ਜੈਤੀ ਜੈਤੀ ਲਕਸ਼ਣ ਵੀ ਉਸ ਕੋ ਕਹੀਏ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਕੋ ਕਿਸੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਾ सो ये है जहां भाव त्याग लक्षणा है। तत्व मसीह महाभाप में लक्षणा लगाने वास्ते तत्पद और तुम पद का वाच अर्थ दिखाते हैं। तत्पद का वाच अर्थ ईश्वर कहिए सर्व का प्रेरक और स्वतंत्र कहिए कर्मों के अधीन नहीं और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, व्यापक है, माया जा के अधीन है और बंध और मोक्ष से रहित है। इतने धर्मों वाला ईश्वर चेतन तत्पद का वाच अर्थ है। त्वं पद का वाच अर्थ जिसमें ईश्वर से उल्टे धर्म है, सो जीव चेतन त्वं पद का वाच अर्थ है। जाने अल्पाग प्रसन्न कर्मों के अधीन अविद्या से मोहया हुआ बंध और मोक्ष वाला और प्रताप कितने धर्म वाला जीव चेतन तुम पद का वाच अर्थ कहिए। वस्तु की सिद्धि लक्षण प्रमाणा प्रमाण वस्तु सिद्धि नतु प्रतज्ञा मात्रेण अर्थ लक्षण से और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, केवल कहने मात्र से नहीं होती। अष्टपुरियों के समूह का नाम पुरजिष्टका है। सो अष्टपुरी ये है पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, चतुष्ट अंतःकरण, पांच प्राण, पांच सूक्ष्म भूत, अविद्या काम कर्म। चार प्रकार की कार्य अविद्या है, अनित में नित बुद्धि, असुच में सोच बुद्धि, असुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि। ये चार प्रकार की कार्य अविद्या है। अहंग्रह ध्यान ओंकार सर्व प्रकाशी आत्म शुद्ध अक्रय अविनाशी ईश जीव में भेद न जानो साध चोर सब ब्रह्म पहचानो अस्थि चीटी त्रिण आदम एक अखंडत बस अनादम। एक ओंकार भाव एक जो ओंकार है ब्रह्म, उसको चिंतन करके फिर ब्रह्म रूप ओंकार ओम का आत्मा से पियो भेद चिंतन करे। काहे से आत्मा का ब्रह्म से मुख भेद है और जैसे ओंकार की चार मात्रा हैं और ब्रह्म वायुगुरु के चार पद हैं, तैसे आत्मा के भी चार पाद भाव चार हिस्से हैं। जीव ईश्वर की एकता है। नाम एक दो तीन चार चार हिस्से ओं आ उ मा अमात्र चार हिस्से वायुगुरु वा हे गुरु चार हिस्से ईश्वर बैराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ईश्वर साक्षी ब्रह्म चार हिस्से जीव विश्व तेजस प्राग जीव साक्षी कूटस्थ स्थान सज्जा नेत्र कंठ हृदय रोम रोम अवस्था जागृत सुखन सुषुप्ति तुरिया भोग स्थूल सूक्ष्म आनंद अपोगता बुद्धि बहर प्राग अंतर प्राग प्रज्ञान घन आप्रख उपाधि व्यष्टि समष्टि स्थूल उपाधि वाला विश्व वैराट है, दोनों एक रूप हैं। अंतरप्रख सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि उपाधि वाले तेजस के हिरण्यगर्भ है, ये भी दोनों एक रूप हैं। प्रज्ञान घन कारण व्यष्टि समष्टि उपाधि वाले प्रग ईश्वर है, ये दोनों एक रूप हैं। निरुपाद भाव साखी आत्मा और ब्रह्म उपाधि से ईश्वर शुद्ध है, जो दोनों एक रूप हैं। विचार सागर के पदार्थ समाप्त। सप्तम त्रंगा अर्थ जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णनम ज्ञानी के व्यवहार में निजम नहीं दोहा। उत्तम मध्यम कनिष्ठ त्यू सन्यास गुरु देव गुरुपदेश ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो रहो न संसलेश। टीका यद्यपि गुरु ने उपदेश तीनों को साथ ही किया तथा भी गुरु उपदेश ते साक्षात्कार उत्तम तत्व दृष्टि कूं हुआ। दोहा परमन कर्त ज्यों पवन ते सुखो की प्रपात शेष कर्म प्रारभते क्रिया कर्त दर्शात। शेष मैंने संपूर्ण कब हुंक चाड़ रथ बाज गाज बाग बगीचे देख ਬਾਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਜ ਹਾਥੀ ਨਮਰ ਪਾਦ ਪੁਨ ਏਕਲ ਏਕਲੇ ਫਿਰਿਆਵ ਤਿਹ ਲੇਖ ਨਗਨ ਪਾਦ ਪੁਨ ਏਕਲੇ ਫਿਰਿਆਵ ਤਿਹ ਲੇਖ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਬਿਵਦ ਵੇਸ਼ ਛਾਇਆ ਸ਼ੈਨ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਬਿਵਦ ਵੇਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬੇਸ਼ਮੇ ਨੇ ਵਸਤਰ ਛਾਜਾ ਮੈਨੇ ਸੇਜਾ ਸ਼ੈਨ ਸੋਨਾ ਕਬ ਹੂਕ ਅਨਸ਼ਨ ਗਿਰ ਗੁਹਾ ਰਜਨੀ ਸ਼ਿਲਾ ਸੰਯੋਗ ਅਨਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਗਿਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਹਾ ਮੈਨੇ ਗੁਫਾ ਰਜਨੀ ਰਾਤ ਸ਼ਿਲਾ ਪੱਥਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੂਜਨ ਕਰਤ ਕਹੂ ਜਨ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਉਗਾ ਲੋਕ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੱਖ ਕਹਿਤ ਕਰਮੀ ਤੇ ਕਾਰ ਉਗਾ ਮੈਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਤਾ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤ ਸੰਚਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੋਲੇਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੇ ਪੁੰਨ ਦੋਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜੋ ਲਖੈ ਤਾਹੀ ਪਾਉ ਫਲ ਦੇਤ ਐਸੇ ਤਾਂ ਕੇ ਤੇਹ ਕੋ ਬਿਨਾ ਨਿਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਨ ਪ੍ਰਮ ਸੰਦੇਹ ਵੈ ਲਹਿਓ ਤਤੁ ਨਿਰਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨ ਤਾਂ ਭੂਕ ਤਬ ਪਸ਼ੂ ਭਯੋ ਭੇਦ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸ਼ ਉਪਜੋ ਭੇਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਅਦ ਵੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਕਾ ਆਖੇਪ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਮਾਧੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨਿਰਵਾਹ ਤੇ ਅਦਕ ਅਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਨਿਯਮ ਕਾ ਆਖੇਪ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਨੇਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਜਾ ਦੁਖ ਹੇ ਤਲਖ ਲਹਿ ਸਮਾਦ ਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈ ਕਿੰਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਅਸ਼ਨ ਜਲ ਪਾਨ ਭਿਖਿਆਸ਼ਨ ਭਿਖਿਆ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਭੂਲੈ ਨਾਹੀਂ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੈਂ ਗਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੈ ਗਲਾਂ ਲਹਿ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸਮਾਧ ਕੋ ਪੁਨ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਹੇਤ ਹੇਤ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਸੁਖ ਤਜ ਪਰਮਤ ਨਰ ਕੂਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਤ ਗੌੜ ਪਾਦ ਮੁਨਿ ਕਾਰਕਾ ਲਿਖਿਓ ਸਮਾਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਕਾ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਤਜ ਬਖਸ਼ੇਪ ਜੋ ਲਹਿ ਸਕਲ ਸੁਖ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟੰਗ ਬਿਨ ਹੋ ਤਨੈ ਸੋ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਮੂਲ ਅਸ਼ਟੰਗ ਤੇ ਅਬ ਸੁਨੋ ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਅਨੁਕੂਲ ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਚ ਪਾਤ ਜਮ ਨਿਜਮ ਲੱਖ ਆਸਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮ ਅਣਕ ਵਿਦ ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਰੋਪਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਛਠੀ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਪੁਨ ਅਰ ਸਭ ਕਲਪ ਸਮਾਦ ਅਸ਼ਟੰਗ ਜੇ ਸਾਧਕੇ ਨਿਰਵਕਲਪ ਨਿਰਵਕਲਪ ਆਰਾਦ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਕਰਤਵਯਤਾ ਤੱਤਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੰਸ ਦੇਤ ਉੱਤਰ ਕਛ ਪਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਖਤੇ ਵਕਤ ਸਾ ਪ੍ਰੇਤ ਟੀਕਾ ਜੈਸੇ ਸਾ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਤ ਸਹਿਤ ਭੂਤ ਕੇ ਆਵੇਸ਼ ਬਾਲਾ ਵਕੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੈਸੇ ਅਨਥਾ ਕਹਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੰਸੇ ਹੈ ਅਨ ਦੁਹਾ ਕਾ ਅਕਸ਼ਰ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਾਹ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨ ਔਰ ਤਾਪ ਕਾਰਨ ਭੇਦ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਤਥਾ भेद भ्रम के कार्य राग द्वेष तो है नहीं, किंतु ज्ञानवान के भी प्रारब्ध कर्म शेष रहे हैं, सोई ताके व्यवहार में निमित्त हैं। सो प्रारब्ध कर्म पुरुष पे से नाना प्रकार का हुए है, यहाँ ते ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म जन व्यवहार का निजम नहीं, यह सिद्धांत पक्ष है। कोई ऐसे कहे है ज्ञानी के व्यवहार में और किसी कर्म का तो निजम नहीं, परंतु ज्ञानवान की निवृत्ति का निजम है। प्रवृत्ति हो गया तो देह स्थिति के हेतु अपेक्षा आशन कुपीन आशादन मात्र टकने गई ग्रहण के में प्रवृत्ति हो गया है, अन प्रवृत्ति हो गए नहीं। काहे ते ज्ञान की उत्पत्ति से प्राथम जिज्ञासा काल में विषण में दोष दृष्टि से वैराग हो गया है, सो वैराग ज्ञान की उत्पत्ति से अनंतर भी दोष दृष्टि थे तथा विषण में मिथ्या बुद्धि से हो गया है। अप्रोक्ष रूप से मिथ्या जाने पदार्थन में सतबुद्धि हो गया नहीं, दोष दृष्टि ते राग हो गया नहीं और प्रवृत्ति राग ते हो गया, ज्ञानी के राग संग हुए नहीं जानते प्रवृत्ति हो गया नहीं। शरीर निर्वाहक भोजन आदकन में प्रवृत्ति तो राग ते बिना प्रारंभ कर्म ते संग हुआ है। कर्म तीन प्रकार के हैं, संचित अगामी अग्नि होने वाले और प्रारब्ध। तीन में भूत शरीरन में किए कर्म फलारंभ रहत संचित कर्म कहिए है, भविष्य कर्म आगामी कहिए है, भूत शरीर में क्रिया वर्तमान शरीर का हेतु कर्म प्रारंभ कहिए है। तीन में संचित कर्म का ज्ञान ते नाश हो गए है, ज्ञानवान को आत्मा में कर्तव्य प्राण कर्तृत्व प्रांति नहीं जानते, तांकु अगामी कर्म का संभव नहीं और जिस प्रारब्ध कर्म ने ज्ञानी के शरीर का आरंभ किया है सोई प्रारब्ध कर्म शरीर स्थिति के हेतु भिक्षा आदकन में प्रवृत्ति करवावे है। प्रारब्ध कर्म का भोग बिना नाश होवे नहीं। और कहूँ ऐसा लिखा है संचित अगामी कर्म की न्यायी ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म भी रह नहीं जानते, भोजन आदक प्रवृत्ति भी ज्ञानी को संभव नहीं। ताका जय अभिप्राय है ज्ञानी की दृष्टि ते आत्मा में कर्म और तांके फल का संबंध नहीं, जाते आत्मा में सर्व कर्म का निषेध अभिप्राय ते प्रारब्ध का निषेध किया है और ज्ञान के पूर्व किए प्रारब्ध का ज्ञानी के शरीर को भोग होवे नहीं। इस अभिप्राय ते प्रारब्ध का निषेध नहीं काहे ते सूत्रकार ने ये लिखा है ज्ञानी के संचित कर्म का ज्ञान ते नाश होवे है, अगामी का संबंध होवे नहीं, प्रारब्ध का भोग ते नाश होवे है जानते प्रारब्ध के बल ते शरीर निर्वाहक क्रिया ज्ञानी की होवे है अधिक नहीं। परंतु कर्म नाना प्रकार के हैं, जहाँ एक कर्म नाना शरीर का आरंभ होवे ऐसे कर्म ते रचत प्राथम शरीर में जहाँ को ज्ञान हो गया तहाँ ज्ञान मन को उन शरीर की प्राप्ति हुई चाहिए। काहे ते फल का जाने आरंभ किया है सो प्रारब्ध कहिए है, ताका भोग बिना नाश हो गया नहीं। अनेक शरीर का हेतु कर्म एक है, तामे प्राथम शरीर जो उपजाया तामे ज्ञान हुआ ता कर्म के फल ज्ञान ते अनंतर और शरीर शेष बाकी रहे है। जहाँ ते ज्ञानवान को की अन्य शरीर की प्राप्ति हुई चाहिए और जो ऐसे कहें प्रारब्ध कर्म का फल जितने शरीर होवे उतने शरीर ज्ञान को भी होवे है, प्रारब्ध के भोगते अधिक होवे नहीं। जहाँ ते ज्ञान भी सफल होवे है सो बना नहीं। काहे ते जय वेद का टंडोरा है, ज्ञानवान के प्राण अन्य लोक में 22 लोक के अन्य शरीर में गमन नहीं करते, किंतु किसी स्थान में अंतःकरण इंद्रिय सहित लीन हुए है और प्राण गमन बिना अन्य शरीर की प्राप्ति संभव नहीं। जाते ज्ञानवान को प्रारब्ध शेष ते और शरीर हुए है ये कहना तो संभव नहीं, किंतु यह समाधान है जहाँ अनेक शरीर का आरंभक एक कर्म होवे तहाँ अंत शरीर में ही ज्ञान होवे है। पूर्व शरीर में ज्ञान हुआ नहीं, काहे ते अनेक शरीर का आरंभक प्रारब्ध ही ज्ञान का प्रतिबंधक है। जैसे विषण में असक्ति बुद्धिमंदता, भेदवादी वचन में विश्वास ज्ञान के प्रतिबंधक हैं, तैसे विलक्षण परारब्ध भी ज्ञान का प्रतिबंधक है। विलक्षण अधिक और ज्ञान के प्रतिबंधक होते जहां ज्ञान साधन श्रवण आदि हो गए, तहां प्रतिबंध दूर हुए ते प्रथम जन्म विखे किए जो श्रवण आदि हैं तेन ते भी अन शरीर में ज्ञान हुआ है। जैसे वामदेव ने ऋषि पूर्व जन्म विखे श्रवण आदि किए तब प्रारब्ध का फल एक शरीर शेष होते ज्ञान नहीं हुआ, किंतु श्रवण आदि करते वर्तमान शरीर का पात हुए के अन्य शरीर की प्राप्ति हुए ते पूर्व जन्म में किए श्रवण आदिकन ते गर्भ विखे ज्ञान हुआ है। जाते ज्ञान से अनंतर अन्य शरीर का संबंध हुआ नहीं और वर्तमान शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से हुए है, कहा जितनी चेष्टा शरीर की निर्वाहक है सोई हुए राग जन अधिक चेष्टा हुए नहीं, जानते सर्व प्रवृत्ति रहत ज्ञानी हुए है। इस रीति से निवृत्ति प्रधान ज्ञानी का व्यवहार हुए है। जान के विखे ऐसी शंका है, मन का स्वभाव अति चंचल है, निरालंब मन की उलंघना आश्रय निरालंब बिना आश्रय मन की स्थिति हुआ नहीं, किसी अलंब ते मन की स्थिति हुआ है। जानते मन के किसी अलंब की प्राप्ति निमित्त भी ज्ञानवान की प्रवृत्ति हुए है, ताका यह समाधान है। यद्यपि समाधिहीन पुरुष का मन चंचल हुआ है तथापि समाधि ते मन का विजय हुआ है और ज्ञानवान समाधि विखे स्थित हुआ है। जाते ज्ञानवान की प्रवृत्ति हुआ नहीं सो समाधि इन अष्ट अंगन में हुआ है। जम निजम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सावकल्प समाधि इन अष्ट अंगन ते समाधि हुए है। अहिंसा सत अस्ते चोरी न करनी ब्रह्मचर्य सारी इंद्रियों बुकारा तो रुकना अपरिग्रह बहुत धन इकट्ठा न करना ये पांच यम कहे हैं। सोच पवित्रता संतोख तप स्वाध्याय धर्म शास्त्र पढ़ने ईश्वर वरणी दान ईश्वर दे ध्यान विच मगन होना पांच नियम है और ज्ञान समुद्र ग्रंथ में दस प्रकार के जम और दस प्रकार के नियम कहे हैं। सो प्राण की रीति से कहे हैं विधान संप्रदाय में जम नियम के पांच पांच ही भेद हैं और आसन के भेद अनंत हैं। तन में स्वस्तक गोमुख वीर कूरम पद्म कुकुट कूर्म कुछुरी ने कुकुट में कुकुरी ने उतान कूर्मक तानश मत समझे ने पश्चिमतान म्यूर मोर शाग मुर्दे जन सिंह पत्थर सिद्ध इत्यादि 84 आसन जो ग्रंथ में लिखे हैं तिनके लक्षण भी तहां लिखे हैं। ग्रंथ की विस्तार पैदे तहां वेदांत में अत्यंत उपयोगी नहीं जानते लक्षण लिखे नहीं। तिन में सिंह पत्थर पद्म सिद्ध ये चार आसन प्रधान है। तीन चार में भी सिद्ध आसन अत्यंत प्रधान है, ताका यह लक्षण है। बाम पाद की एडी गुदा के मिंडर के मध सीवन में दाव के तरह नाड़ी दक्षिण पाद की एडी मिंडर के ऊपर दाव के तरह प्रयुक्ति के अंतर्दृष्टि रखे सथानु खंभे दी न्याय सारल सिद्धा निश्चल शरीर ते स्थित स्थिति गुण सिद्ध आसन कहे हैं और कोई ऐसे कहे हैं बाम पाद की एडी सीवन में नहीं लगावे किंतु मिडल के ऊपर लगावे ताकि ऊपर दक्षिण एडी तरे और पूर्व की न्याय जय। सिद्धासन ही अति प्रधान है, काहे थे कितने आसन तो रोग नाशक के हेतु हैं और कोई आसन ऐसे हैं प्राणायाम आदक समाधि के अंग जितने जिनते हुए हैं और सिद्धासन समाधि काल में हुए हैं जानते अति प्रधान है। जानी कुजरासन मुक्तासन भुक्तासन करे हैं आसन सिद्धि से अनंतर प्राणायाम भी करे सो प्राणायाम बहुत प्रकार का है तथापि संक्षेप से जय लक्षण है। अंगूठे अंगुली दी गुलाई वाले हाथ गोडियां ते रखने ये पदरा मुद्रा नासा के बाम शिद्र द्वारा इड़ा नाम नाड़ी ते बाजू को पूरण करे ताकु पूर कहे हैं। दक्षिण ते त्यागे ताकु रिच कहे हैं। सुखमना ते रोके ताकु कुंभक कहे हैं। कुंभक नाम रोकने दा। इसी रीति से पूरक रेच कुंभक प्राणायाम कहे हैं। सो दो प्रकार का है, एक अगर्भ है तैसे दूसरा सगर्भ है। प्राणों के उच्चारण रहत प्राणायाम अगर्भ कहिए है। प्राण ओंकार के उच्चारण सहित प्राणायाम सगर्भ कहिए है। विषंते सकल इंद्रिय के निरोध को प्रत्याहार कहे है। अंतःकरण की स्थिति धारणा कहिए है। अंतराय रहत अद्वितीय वस्तु के अंतःकरण का प्रवाह ध्यान कहिए है। पर्दे अंतराय सहत पर्दे सहत और व्युत्थान संस्कारण का तिरस्कार और निरोध संस्कारण की प्रकटता हुई अंतःकरण व्युत्थान का मतलब छोड़ देना अंतःकरण का कागरूप प्रणाम समाधि कहिए है। निरोध संस्कारण की प्रकटता हुई अंतःकरण का कागरूप प्रणाम समाधि कहिए है। सुसमाधि दो प्रकार की है, एक सावकल्प समाधि है दूसरी निर्वकल्प समाधि है। ज्ञाता ज्ञान के रूप त्रिप्ति पान सहत अद्वितीय ब्रह्म विखे अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति सावकल्प समाधि कहिए है। सो सावकल्प समाधि दो प्रकार की है, एक तो शब्द अनुविद है दूसरी शब्द अनुविद है। अहम ब्रह्म अस्मि इस शब्द करके अनुविद कहिए सहत होवे सो शब्द अनुविद कहिए है। शब्द रहत कुं शब्द अनुविद कहे हैं। तृप्ति पान रहत प्रतीति मानवन प्रतीति अखंड ब्रह्म पार अंतःकरण वृत्ति की स्थिति निर्वकल्प समाधि कही है। इस रीति से सावकल्प और निर्वकल्प समाधि के दो भेद हैं। तीन में सावकल्प समाधि साधन है और निर्वकल्प समाधि फल है। साधन रूप जो सावकल्प समाधि है ताकि विखे जदपि तृप्ति रूप द्वैत प्रतीत हुए है तथा कि सो द्वैत इस रीति से ब्रह्म रूप करके प्रतीत हुए है। जैसे मृतका मुकारण को मृतका रूप जाने ते विवेकी को मृतका के वकार काटाद प्रतीत भी हो गए हैं परंतु मृतका का रूप ही प्रतीत हो गए हैं। ऐसे सावकल्प समाधि में तृप्ति द्वैत ब्रह्म रूप ही प्रतीत हो गए हैं। निर्वकल्प समाधि विषय भी सावकल्प समाधि की न्याय तृप्ति रूप है द्वैत विद्यमान भी हो गए है तो भी तृप्ति द्वैत की प्रतीति हो गए नहीं। जैसे जल में लवन को घेरे तहां लवण विद्यमान होवे है परंतु नेत्र से लवण की सर्वथा प्रतीति होवे नहीं। इस रीति से सावकल्प समाधि निर्वकल्प समाधि का जय भेद सिद्ध हुआ। सावकल्प समाधि में ब्रह्म रूप करके द्वैत की प्रतीति और निर्विकल्प समाधि में तृप्ति रूप द्वैत की आप्रतीति, तैसे सुषुप्ति में निर्विकल्प का जय भेद है। सुषुप्ति में अंतःकरण की ब्रह्माकार व्यक्ति का अभाव हुए है और निर्विकल्प समाधि में ब्रह्माकार व्यक्ति तो अंतःकरण की हुए है ता का अभाव हुए नहीं। इस रीति से सुषुप्ति में तो व्यक्ति सहित अंतःकरण का अभाव हुए है और निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति सहित अंतःकरण तो हुए है ताकि प्रतीति हुए नहीं। निर्विकल्प समाधि विषय अंतःकरण की जो ब्रह्माकार व्यक्ति हुए है ताका हेतु सावकर्म समाधि का अभ्यास है, जाते साधन रूप अष्टांगन में सावकल्प समाधि गिनी है। निर्विकल्प समाधि फल है, सो निर्विकल्प समाधि भी दो प्रकार की होवे है, एक अद्वैत भावना रूप और दूसरी अद्वैत अवस्था अनुरूप होवे है। अद्वैत में स्थिति अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण की व्यक्ति ज्ञान सहित हो गए है। अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि कहिए है, जहाँ समाधि में अभ्यास अधिक हुए ते ब्रह्माकार व्यक्ति भी शांत हो जावे है, जहाँ ते व्यक्ति रहत को अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि कहे है। जैसे तप्त लोह के ऊपर जल की बूंद गेरी तप्त लोह में प्रवेश करे है, तैसे अद्वैत भावना रूप समाधि के दृढ़ अभ्यास से अत्यंत प्रकाशमान ब्रह्म विखे व्यक्ति का लय हो गया है। सो अद्वैत अवस्थान रूप निर्विकल्प समाधि का साधन है। अद्वैत अवस्थान रूप समाधि और सुषुप्ति का इतना भेद है, सुषुप्ति में व्यक्ति का लय अभियान में हुए है, अद्वैत अवस्थान समाधि में व्यक्ति का लय ब्रह्म प्रकाश में हुए है और सुषुप्ति का आनंद अज्ञानावृत है और समाधि में निर्वरण ब्रह्मानंद का पान हुआ है, परंतु निर्वरण समाधि में चार विघ्न हुए हैं, सो निषेध करने को कहिए है लय नींद भूखेप चंचलता और कषाय और आवाधक। सो निषेध करने को कहिए है ते रस स्वाद कषाय जड़े पाप कर्म रस स्वाद आलस करके अथवा निंद्रा करके वृत्ति के भाव को लय कहे है, ता लैते सुषुप्ति समान अवस्था हुए है, ब्रह्मानंद का पान हुए नहीं। यहाँ ते निंद्रा आल साधक निमित्त ते जब व्यक्ति का अपने उपादान अंतःकरण में लय होता दिखा तब योगी सावधान हुए के निंद्रा आदकों को रोक के व्यक्ति को जगावे। इस रीति से लय रूप विघ्न का विरोधी जो निंद्रा आलस निरोध सहित व्यक्ति का प्रवाह रूप जागरण तांकु गौड पाद चार्ज चित्त संबोधन कहे है। दूसरा भक्षेप का यह अर्थ है, जैसे बाज व बिल्ली के डर के चटका चिड़ी ग्रह में प्रवेश करे तब भय व्याकुल को ग्रह के अंतर तत्काल स्थान दिखे नहीं, या तो फिर बाहर आए के भय अथवा मरण रूप खेद को प्राप्त हो गया है, तैसे अनात्म पदार्थों को दुख हेतु जान के अद्वैतानंद को विषय करने वास्ते अंतर्मुख हुई जो व्यक्ति तहां व्यक्ति का विषय राग आदक है, सो तो क्षिपत अंतःकरण में हो गए हैं तांका अधिकार भी नहीं, तो भी अनेक जन्म विखे पूर्व अनुभव किए जो बाहज अंतर राग द्वेष तिनके सूक्ष्म संस्कार भक्षिप्त आदक अंतःकरण में भी संभव है, जानते राग द्वेष का नाम कषाय नहीं किंतु राग द्वेष आदकन क्या संस्कार कषाय कही है, तो संस्कार अंतःकरण रहे जितने दूर होवे नहीं, जिन्हों से जानते समाधि काल में भी अंतःकरण में रहे हैं परंतु राग द्वेष आदकन के उद्भूत संस्कार समाधि की विरोधी हैं, अन्य उद्भूत गुप्त जड़े विरोधी नहीं, प्रगट को अन उद्भूत कहे हैं, अप्रगट को अनुद्भूत कहे हैं। समाधि में प्रगट योगी को जो राग द्वेष के संस्कारण की प्रगटता होवे तो वेशन में दोष दर्शन ते दाब देवे, बक्षेप कुशाय का जय भेद है। बाह्य निशाकार व्यक्ति को विक्षेप कहे है और योगी के प्रयत्न ते जहाँ व्यक्ति अंतर्मुक्त हुए परंतु रागातकन के उत्पत्त संस्कारम ते अंतर्मुख हुई व्यक्ति भी रोक जावे, ब्रह्म को विषय करे नहीं, तांकु कुशाय कहे है। विषय में दोष दर्शन दोख देखने सहित योगी के प्रयत्न के कुशाय विघ्न की निवृत्ति हो गए है। चौथा रसवाद का जो अर्थक योगी को ब्रह्मानंद का अनुभव हो गया है और विक्षेप रूप दुख की निवृत्ति का अनुभव हो गया है, तो दुख की निवृत्ति से भी आनंद हो गया है। जैसे पारवाही पुरुष का पार उतरे से तंकु आनंद हो गया, तहां आनंद में और तो कोई विषय हेतु है नहीं, किंतु पार जन दुख की निवृत्ति से यह कहे है मेरे को आनंद हुआ, जानते दुख की निवृत्ति भी आनंद का हेतु है। तैसे योगी को समाधि में विक्षेप जन दुख की निवृत्ति से जो आनंद हो गया ता का अनुभव रसा स्वाद कहिए है। जो दुख निवृत्ति जन आनंद के अनुभव से ही योगी अलंग बुद्धि कर लेवे है तृप्त, तो सकल उपाधि रहत ब्रह्मानंदाकार व्यक्ति के अभावते ता का अनुभव समाधि में हुए नहीं, जानते दुख व्यक्ति जन आनंद का अनुभव रूप रसा स्वाद भी समाधि में विघ्न है। वांछित की प्राप्ति बिना भी विरोधी की निवृत्ति से आनंद की उत्पत्ति में अन दृष्टांत, जैसे पृथ्वी में निधि होवे तो निधि अत्यंत विषधर सर्प न रक्षित होवे जहरी सर्प द्वारा, तहां निधि प्राप्ति से प्रथम भी निधि प्राप्ति का विरोधी जो सर्प है तहां की निवृत्ति से आनंद होवे है। तहां सर्प निवृत्ति के आनंद में जो अलंग बुद्धि करे तो उद्यम त्याग ते निधि प्राप्त का परमानंद प्राप्त हो गया नहीं। तैसे अद्वैत ब्रह्म रूप निधि है, देह आदक अनात्म पदार्थों की प्रतीति रूपी जो विक्षेप सो सर्प है, विक्षेप रूपी सर्प की निवृत्ति जन जो अवंतर बीच आनंद रूपी रस का अनुभव रूप आस्वादन है, निधि रूपी अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति जन जो आनंद है ताकि प्राप्ति का प्रतिबंधक होने ते विघ्न कहिए है। अथवा रसा स्वाद जय और अर्थ सावकल्प समाधि से उत्तर निर्विकल्प समाधि होवे है और सावकल्प समाधि में तृप्ति प्रतीत होवे है, जानते सावकल्प समाधि का आनंद तृप्ति रूप उपाधि सहित होने ते सो उपाधक कहिए है और निर्विकल्प समाधि में तृप्ति प्रतीत होवे नहीं, जानते निर उपाधक आनंद निर्विकल्प समाधि में होवे है। इस रीति से सावकल्प समाधि से उत्तर निर्विकल्प समाधि के आरंभ में भी सावकल्प समाधि के सो उपाधक आनंद को त्याग सके नहीं, किंतु तांकू अनुभव करे सो रसा स्वाद कहिए है। जानते विक्षेप निवृत्ति जन आनंद का अनुभव अथवा सावकल्प समाधि के आनंद का अनुभव रसा स्वाद कहिए है, सो दोनों प्रकार का रसा स्वाद निर्विकल्प समाधि के परमानंद के अनुभव का विरोधी होने ते विघ्न है, जाते तांकू पी त्यागे। ऐसे निर्विकल्प समाधि में चार विघ्न हुए हैं, तो चारों विघ्न समाधि के आरंभ में हुए हैं, ज्ञानवान बाह्य प्रवृत्ति के असंभव के अखेप की शंका की समाप्ति। सावधानता से चारों विघ्नों को रोक के समाधि में परमानंद को विद्वान अनुभव करा है ताही को जीवन मुक्त कहे हैं। इस रीति से ज्ञानी का चित निरालंब नहीं होवे है। जब परारावत समाधि से उत्थान हो गए तब भी समाधि में जो परमानंद का अनुभव किया है ताकि स्मृति होवे है जाते उत्थान काल में उपरांत भी ज्ञानी का चित निरालंब नहीं और ज्ञानवान की जो भोजन आदकन में प्रवृत्ति होवे है सो केवल परारव से होवे है परंतु भोजन आदक व्यवहार में ज्ञानी खेल मान के प्रवृत्त होवे है काहे ते भोजन आदकन में प्रवृत्ति भी समाधि सुख की विरोधी है जांतु भोजन आदक शरीर निर्वाह की प्रवृत्ति ही खेद रूप प्रतीति होवे है ताकि अधिक प्रवृत्ति संभव है नहीं। इस रीति से बहुत आचार्यों ने यही पक्ष लिखा है और जीवन मुक्ति का आनंद भी बाह्य प्रवृत्ति में हुए नहीं किंतु निवृत्ति में हुए है जहाँ से जीवन मुक्ति के सुखार्थी ज्ञानवान की बाह्य प्रवृत्ति संभव है नहीं। गत अक्षेप का समाधान तथापि ज्ञानवान की निवृत्ति का भी निजम कहना संभव नहीं कहते निवृत्ति में अथवा प्रवृत्ति में भेद की आज्ञा विधि तो ज्ञानी को है नहीं जहाँ तक ज्ञानी के व्यवहार में निजम हो गए जहाँ तक ज्ञानी निरंकश है तहाँ का व्यवहार प्रारब्ध से हुए है जिस ज्ञानी का प्रारब्ध भिक्षा भोजन मात्र फल का हेतु है तहाँ की भिक्षा भोजन मात्र में प्रवृत्ति हुए है जहाँ का प्रारंभ अधिक भोग का हेतु हुए ताकि अधिक अधिक में भी प्रवृत्ति हुए है और जो ऐसे कहे जहाँ का प्रारंभ अपेक्षा भोजन मात्र का हेतु हुए ताकि को ज्ञान हुए है अधिक व्यवहार का हेतु जहाँ का प्रारंभ है ताकि ज्ञान हुए नहीं जहाँ से अपेक्षा भोजन अधिक व्यवहार ते अधिक व्यवहार ज्ञानी का हुए नहीं जहाँ की अल्प प्रवृत्ति हो गए सो ज्ञानी नहीं सो शंका बने नहीं काहे ते याग्वल्क जन का तो ज्ञानी कहे है सभा विजयते धन संग्रह व्यवहार याग्वल्क का तथा राजपालन व्यवहार जन का कहया है और विशेष ग्रंथ में हे ज्ञानी पुरुषन के व्यवहार नाना प्रकार के कहे हैं जहाँ से ज्ञानी की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति निजम नहीं यद्यपि याग्वल्क ने सवा विजय ते उत्तर बाद में विद्वत संन्यास रूप निवृत्ति ही तारी है ज्ञानी ज्ञानी तो बाद त्याग गया और प्रवृत्ति में गलानी के हेतु नाना दोष कहे हैं तथापि जागवलकों विद्वत संन्यास ते पूर्व ज्ञान नहीं था ये कहना तो संभव नहीं किंतु ज्ञान तो प्रथम ही था परंतु विद्वत संन्यास ते पूर्व जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त हुआ नहीं जानते जीवन मुक्ति के आनंद वास्ते सर्व संग्रह का त्याग किया है जागवलों को प्रारंभ कुछ काल अधिक भोग का हेतु था और उत्तर काल न्यून भोग का हेतु था जानते प्रारंभ तो जागवलों को गलानी बिना अल्प भोग और आगे गलानी ते सर्व भोगन का त्यागा हुआ है और जनक का प्रारंभ मरण पर्यंत राजपालन आदक समृद्धि भोग बड़े बड़े भोग का हेतु हुआ जानते सदा त्याग का भाव ही हुआ है भोगन में गलानी भी हुई नहीं और काम देवादकन का प्रारंभ न्यून भोग का हेतु हुआ है तिनको सदा भोगन में गलानी ते प्रवृत्ति का पाप भी कहया है और वाशिष्ठ में ऐसा भी प्रसंग है शेखर तो आज की ज्ञान ते अनंतर अधिक प्रवृत्ति हुई शेखर इस रीति से नाना प्रकार के विलक्षण व्यवहार ज्ञानी पुरुष के कहे हैं तिन सर्व को ज्ञान समान है और तादा काल मोक्ष भी समान है और प्रारब्ध भेद से व्यवहार का भेद है व्यवहार की न्यूनता से जीवन मुक्ति के सुख की अधिकता और व्यवहार की अधिकता से जीवन मुक्ति के सुख की न्यूनता हो गए ज्ञानी को बदे मोक्ष त्याग वा परलोक की इच्छा हुए नहीं कोई जय शंका करे है जो जीवन मुक्ति के सुख को त्याग के तुष्ट भोगन में प्रवृत्त हो गए सो बदे मोक्ष को भी त्याग के वैकुंठाधिक लोक की इच्छा धार के जावेगा सो शंका बने नहीं कहे ते जीवन मुक्ति के सुख का त्याग और भोगन में प्रवृत्ति तो ज्ञानी की परारव ते संभवे है और बदे मोक्ष का त्याग और परलोक को गमन संभवे नहीं। काहे ते ज्ञानी के प्राण बाहर गमन करे नहीं, जानते परलोक को गमन संभवे नहीं और बदे मोक्ष का त्याग भी संभवे नहीं। काहे ते ज्ञान ते अज्ञान की निवृत्ति होए के परारव भोग ते अनंत सथूल सूक्ष्म शरीराकार अज्ञान का चेतन में लय बदे मोक्ष कहिए है सो वश हो गए है। जो मूल अज्ञान बाकी रहे अविद्या से अथवा नष्ट अज्ञान की फेर उत्पत्ति हो गए तो बदे मोक्ष का अभाव हो गए, सो मूल अज्ञान का विरोधी ज्ञान हुए ते अज्ञान बाकी रहे नहीं और प्रमाण ते नाश हुए अज्ञान की फेर उत्पत्ति हो गए नहीं। जाते बदे मोक्ष का अभाव हो गए नहीं और बदे मोक्ष के त्याग में तथा परलोक के गमन में ज्ञानी की इच्छा भी संभवे नहीं। काहे ते ज्ञानी को इच्छा केवल परारव से हुए है, जितनी सामग्री बिना परारव का भोग संभव नहीं उतनी सामग्री परारव रचे है इच्छा बिना भोग संभव नहीं। जानते ज्ञानी की इच्छा भी परारव का फल है और अन्य लोक में अथवा इस लोक में अन्य शरीर का संबंध ज्ञानी को परारव से भी हो गया नहीं, जब पूर्व इसी तरंग में प्रतिपादन कार्य आए हैं। जादे ज्ञानी को परारव से बदे मोक्ष के त्याग की वापर लोक के गमन की इच्छा हो गया नहीं। ज्ञानी की मंद परारव से जीवन मुक्ति सुख की विरोध प्रवृत्ति जीवन मुक्ति के सुख के विरोधी वर्तमान शरीर में आदक भोगन की इच्छा तो भिक्षा भोजन आदकन की न्यायी जनक आदकन को संभव है जहाँ स्थान में जय रहस है। ज्ञानी की बाहज प्रवृत्ति जीवन मुक्ति की विरोधी नहीं किंतु जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख की विरोधी है। काहे ते आत्मा नित मुक्त है, अविद्या से बंद प्रतीत हो गए है। जिस काल में ज्ञान हो गए है इसी काल में अविद्या कृत बंध भ्रम नष्ट हो गए है। ज्ञान हुए ते फिर बंध भ्रांति हो गए नहीं, शरीर सहित बंध भ्रम का अभाव ही न होना जीवन मुक्ति कहिए है। ते आदगन की प्रवृत्ति में तथा निवृत्ति में ज्ञानी को बंध भ्रांति आत्मा हो गए नहीं। जानते बाह्य प्रवृत्ति से भी जीवन मुक्ति दूर हो गए नहीं तो भी बाह्य प्रवृत्ति में जीवन मुक्ति पूर्ण विलक्षण सुख हो गया नहीं। एकाग्रता रूपांतर करण परिणाम ते सुख हो गया है, सो एकाग्रता परिणाम बाह्य प्रवृत्ति में हो गया नहीं। इस रीति से परारत भेदते ज्ञानी प्रश्न के व्यवहार नाना प्रकार के हैं, परंतु जहाँ का परारव अर्थ प्रवृत्ति का हेतु हुए है तहाँ का मंद परारव कहिए है। कार्य ते अर्थ प्रवृत्ति एकाग्रता की विरोधी है और एकाग्रता बिना निरुपाधक आनंद प्रतीत हो गया नहीं, यह समाधि निरूपण में कही है। ज्ञानी के व्यवहार का अनिजम जो पूर्व कहया ज्ञानवान को सर्व अनात्म पदार्थन में मिथ्या बुद्धि हो गए है, राग हो गए नहीं, जानते प्रवृत्ति संभव है नहीं, सोच शंका भी बने नहीं। काहे ते जैसे देह दिखे मिथ्या बुद्धि भी ज्ञानी को हुए है तो भी देह के अनुकूल जो प्रेक्षादक हैं तिन में केवल परारव से प्रवृत्ति हो गए है। तैसे जिसका अर्थ को का परारव्ध हो गए तेस ज्ञानी की अर्थ प्रवृत्ति भी हो गए है। जैसे बाजी करके तमाशे को मिथ्या जान के सर्वलोगन की प्रवृत्ति हो गए है तैसे सर्व पदार्थ में ज्ञानी को मिथ्या बुद्धि हुए से भी प्रवृत्ति संभव है। और जो ऐसे कहे जाऊ जिस पदार्थ में दुख दृष्टि होवे ताके दिखे तिस पुर की प्रवृत्ति होवे नहीं। ज्ञानी को अनात्म पदार्थन में दुख दृष्टि होवे राग होवे नहीं, जानते प्रवृत्ति संभव नहीं, सोपी बने नहीं। कहे थे जिस अपक्ष सेवन में रोगी ने अनव्यतिरिक दोष निश्चय किया है, दुख दृष्टि से पर्दा रोकना निश्चय किया है ता अपाथ सेवन से परारव ते जैसे रोगी प्रवृत्ति हो गए है तैसे परारव से ज्ञानी की सर्व व्यवहार में प्रवृत्ति दोष दृष्टि हुए भी संभव है। इस रीति से ज्ञानी के व्यवहार का निम्ने यह पक्ष विद्याराम स्वामी ने विस्तार से तृप्ति दीप में प्रतिपादन किया है। अध्याय में जानते तत्व दृष्टि का व्यवहार निजम रहता है, समाधि रूप निजम की विधि सुन के तत्व दृष्टि हंसे है। तत्व दृष्टि देश आदि अपेक्षा रहत देह पात देदा ना सुन दोहा। परमन कर्त कश काल जो तत्व दृष्टि सुजान होगी निज परारव तब लीन पै तेह प्राण। टीका परारव को होते अंतर ज्ञानी के प्राण गमन करे नहीं। जानते तत्व दृष्टि के प्राण लीन हुए जय कहया और ज्ञानी के शरीर त्याग में काल विशेष की अपेक्षा नहीं। उत्तरायण में अथवा दक्षिण में देह पात हुए सर्वथा मुक्त है। तैसे देश विदेश की अपेक्षा नहीं। काशी आदि पुनीत देश में अथवा अत्यंत मलन देश में ज्ञानी का देह पात होवे नाश होवे सर्वदा मुक्त है। तैसे आसन विशेष की अपेक्षा नहीं। पृथ्वी में सब आसन ते अथवा सिद्ध आसन ते देह पात होवे तैसे सावधान ब्रह्म चिंतन करते का अथवा रोग व्याकल हाहा शब्द पुकारते का देह पात हुए सर्वथा मुक्त है। काहे ते जिस काल में ज्ञान ते अज्ञान निवृत्त हुआ किसी काल में ज्ञानी मुक्त है। या ते ज्ञानी को बदे मोक्ष में देश काल आसन आदकन की अपेक्षा नहीं। जैसे ज्ञानी को देह पात में देश काल आदकन की अपेक्षा नहीं तैसे ज्ञान के निमित्त श्रवण में भी देश काल आसन आदकन की अपेक्षा नहीं और अपाशु को देश काल आदकन की अपेक्षा है। यद्यपि भीष्म आदक ज्ञानी कहे हैं और भीष्म ने उत्तरायण बिना प्राण त्याग किए नहीं तथापि भीष्म आदक अधिकारी पुरुष हैं। जानते उपाशकन के उपदेश वास्ते तीनों ने काल विशेष की प्रतीक्षा करी करी और विशेष भीष्मादक अधिकारी हैं। जानते जाते ही उनको अनेक जन्म हुए हैं। काहे ते अधिकारी पुरुष का एक कल्प पर्यंत प्रारब्ध हुए है। कल्प के अंत बिना बदे मोक्ष हुए नहीं और कल्प के भीतर तिनको इच्छा बदते नाना श्री हुए हैं तथापि आत्मा स्वरूप विखे तिनको जन्म मरण प्राप्ति हुए नहीं। जानते जीवन मुक्त है तिन अधिकारी पुरुषन का व्यवहार संपूर्ण अन्न के उपदेश निमित्त है और अन्न ज्ञानी के व्यवहार में कोई निजम नहीं। इस अभिप्राय ते तत्व दृष्टि के देहपात का देश काल आसन आदि कुछ कहा नहीं। दोहा दूजो शेषा दृष्ट ते गंगा तट शुभ थान देश पंत पवित्रत कियो ब्रह्म को ध्यान। शास्त्र रीति तज दे पूर्व कहो जो रहा जाय मिलो सुब्रह्म तैं पायो अदको शाह। उपासना वाले टीका जैसे ज्ञानी को देश काल की अपेक्षा नहीं कहां से विपरीत उपासक जानने उत्तम देश में उत्तम उत्तरायण आदि काल में उपासक शरीर तजे तब उपासना का फल होगा और ज्ञानी को मरण समय सावधानता से गे की स्मृति की अपेक्षा नहीं। उपासकों को मरण समय ते के स्वरूप की स्मृति की अपेक्षा है। जिस ते का पूर्व ध्यान किया है तां ते की स्मृति मरण समय होवे तब उपासक का फल होवे है। जैसे ते की स्मृति चाहिए तैसे ते ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग पंचम तरंग में कहा है तां की भी स्मृति चाहिए। काहे ते मार्ग चिंतन भी उपासना का अंग है और ज्ञान निमित्त श्रवण में देश काल आसन की अपेक्षा नहीं। ध्यान में उत्तम देश निरंतर काल एक रस सिद्धार्थ आसन की अपेक्षा है। जानते आदृष्टि को उत्तम देश गंगा तीर गंगा के किनारे में स्थित और मरण समय भी योग शास्त्र रीति से देह पात कहया। तर्क दृष्टि निश्चय विद्या के अष्ट दशा प्रस्थान अंग सर्व शास्त्र को ब्रह्म ज्ञान की हेतुता कारणता दोहा अर्घ दृष्टि पुनति सरोलहि गुरु मुख उपदेश अष्टदश प्रस्थान जन अवगहन करवेश जिति वाणी बैखरी ताको अलम पशान हेतु मुक्ति को ज्ञान लख अतव निश्चय ज्ञान अष्टदश प्रस्थान विद्या के अंग बेश अच्छी तरह अवगाहन विचारिया और वैखरी उची बोलना बोल के छबदा चरण करना अलंबन संपूर्ण टीका तर्क दृष्टि नाम तीसरा गुरु द्वारा उपदेश को श्रवण करके सुने वा सुने अर्थ में अनुशास्त्र का क्रोध दूर करने को सर्व शास्त्र का अभिप्राय विचार के जय निश्चय किया सकल शास्त्र का परम प्रयोजन मोक्ष है मोक्ष का साधन ज्ञान है सो ज्ञान अद्वय निश्चय रूप है भेद निश्चय यथार्थ ज्ञान नहीं सारे शास्त्र साक्षात प्रगट अथवा परंपरा के ब्रह्म ज्ञान के हेतु है यद्यपि संस्कृत वैखरी वाणी के अष्टदश प्रस्थान है तिनमें कोई कर्म को प्रतिपादन करे हैं कोई विशेष को भौतिक वेद के ग्रंथ विशेष के अपाउन को प्रतिपादन करे है कोई ब्रह्म पेन देवन की उपासना को बोधन करे है तैसे ज्ञान मित जो न्याय सांख आदक शास्त्र हैं सो भी भेद ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान कहे हैं जानते सर्व को अद्वैत ब्रह्म की बोधकता बने नहीं तथापि सगल शास्त्र के कर्ता सुराग हुए हैं और कृपालु हुए हैं जानते तिनके किए मूल सूत्रन का तो वेद के अनुसार ही अर्थ है परंतु तिनके व्याख्यान कर्ता प्रांत हुए मूल सूत्रकार ने अभिप्राय विलक्षण अर्थ किया है सो वेद से विरुद्ध तीन सूत्रन का अर्थ नहीं किंतु सर्व शास्त्र का वेद अनुसारी अर्थ है यह तर्क दृष्टि ने उत्तम संस्कार से निजम निश्चय किया विद्या के अष्टादश प्रस्थान ये हैं चार वेद चार उपवेद खट वेद के अंग प्राण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र रीति से वैखरी वाणी रूप विद्या के अठारह वेद हैं तिनको प्रस्थान कहे हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये चार वेद हैं तीन में कितने वचन के ब्रह्म को बोधन करे हैं कितने देह को बोधन करे हैं और बाकी कर्म को बोधन करे हैं जो कर्म के बोधक वेद वचन हैं तिनका भी अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान ही प्रयोजन है और प्रवृत्ति में किसी वेद वचन का अभिप्राय नहीं किंतु निषेध स्वाभाविक प्रवृत्ति से रोकने में अभिप्राय है जानते अवे अविचार आदि कर्म का प्रतिपादन शत्रु मारने के तरीके कर्म का प्रतिपादन जो अथर्ववेद है ताका भी निवृत्ति में तात्पर्य है जो द्वैत ते शत्रु मारने में प्रवृत्त होवे तो गदान से बिख देनी अथवा अग्निदाह से शत्रु नहीं मारे इस वास्ते अवचार कर्म शेन या गद कहे हैं जानवर की बलि देनी शत्रु मारण के निमित्त जो कर्म है सो अविचार कहे हैं ऐसा शेन नाम जग है शेन जाग का बोधक जो वेद वचन है तंका जय अर्थ नहीं शत्रु मारण कामना वाला शेन जाग में प्रवृत्त होवे किंतु शत्रु मारण की जंग कामना होवे सो शेन जाग ते भिन्न जो गरदान आदि शत्रु मारण के उपाय हैं तिन में प्रवृत्त होवे नहीं इस रीति से द्वैष के प्राप्त जो गरदान आदि तिन ते निवृत्ति में शेन जाग बोधक वचन का अभिप्राय है प्रवृत्ति में नहीं कहे थे प्रवृत्ति द्वैष ते प्राप्त निर्विकल प्रवृत्ति द्वैष ते प्राप्त है सो अन्न ते प्राप्त होवै काम बाप का अभिप्राय हुए नहीं इस रीति से सारे अथर्ववेद का निवृत्ति में तात्पर्य है और तीन वेदन में कर्म बोधक बाकन का अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान के उपयोग स्पष्ट है। चार उपवेदों का भी ब्रह्म ज्ञान में तात्पर्य है। चार उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अथर्व वेद। तीन में आयुर्वेद के कर्ता ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी कुमार, धनंतरी आदक हैं। चर्क बाघ पटादक चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद हैं और बात स्यायन कृत काम शास्त्र भी आयुर्वेद के अंतर्भूत हैं। काहते काम शास्त्र बात्स्यन ऋषि कामशास्त्र का विषय बाजी कर्ण स्तंभन आदक भी चार खादकों ने कथन किए हैं। तेस आयुर्वेद का वैराग में भी अभिप्राय है। काहे थे आयुर्वेद की रीति से रोग आदक निवृत्ति हुए थे भी फिर रोग आदक उत्पन्न हो गए हैं। जाते लौकिक उपाय तोष है इस अर्थ में आयुर्वेद का अभिप्राय है और औषधि औषधि आदकन ते पूर्ण हुए के अंतःकरण की शुद्धि द्वारा भी ज्ञान के उपयोग हैं। ऐसे विश्वामित्र कृत धनुर्वेद में आयुध निरूपण किए हैं। शास्त्र आयुध चार प्रकार के हैं, मुक्त मुक्त मुक्ता मुक्त जंत्र मुक्त चक्कर आदक हाथ से फेंकने फेंकिए सो मुक्त कहिए है, खड़ग आदक मुक्त कहिए है, बर्शी आदक मुक्ता मुक्त कहिए है, चार बाण गोली आदक जंत्र मुक्त कहिए है। श्रीति ये चार प्रकार के आयुध हैं। तीन में मुक्त आयुध को शास्त्र कहे है, अमुक्त को शास्त्र कहे है। इन चार प्रकार के आयुधन के ब्रह्म विष्णु पशुपति शिवजी प्रजापति अग्नि वर्ण आदि देवता मंत्र कहे हैं और क्षत्रिय कुमार अधिकारी कहे हैं और तिनके अनुसारी ब्रह्म आदक भी अधिकारी कहे हैं। तिनके चार वेद कहे हैं पदंती पैदल, तिनके चार भेद कहे हैं पदंती पैदल रथारूढ़ अश्वारूढ़ गजारूढ़ राते सवारी करने घोड़े ते हाथी रे और युद्ध में शकन सगन मंगल कहे या इतना अर्थ धनुर्वेद के प्रथम पाद में कहा और आचार्य का लक्षण था। आचार्य ने शास्त्रों के ग्रहण की रीति धनुर्वेद के द्वितीय पाद में कही है और गुरु संप्रदाय से प्राप्त हुए शास्त्रों का अभ्यास तथा मंत्र सिद्धि देवता सिद्धि प्रकार तृतीय पाद में कहया, सिद्ध हुए मंत्र का प्रयोग चतुर्थ पाद में कहया। इतना अर्थ धनुर्वेद में है सो ब्रह्मा प्रजापति आदकन ने विश्वामित्र को प्राप्त हुआ ताने प्रकट किया और विश्वामित्र ने धनुर्वेद उत्पन्न विश्वामित्र से धनुर्वेद उत्पन्न नहीं हुआ। दुष्ट चौरादकन ते प्रजापालन क्षत्रिय का धर्म बोधक धर्म कहने वाला धनुर्वेद है। जानते तां का भी अंतःकरण शुद्धि करके ज्ञान द्वारा मोक्षी अभिप्राय है। तैसे गंधर्व वेद पात्र ने प्रकट किया ताम में स्वर ताल मूर्छना बाजे सहित गीत नृत्य नाच बाद का बाजेरा और निरूपण विस्तार से किया। देवता का आराधन निर्विकल्प समाधि की सिद्धि गंधर्व वेद का प्रयोजन कहया है। जानते तां का भी अंतःकरण की एकाग्रता करके ज्ञान द्वारा मोक्षी प्रयोजन फल है। तैसे अथर्व वेद भी नाना प्रकार का है, नीति शास्त्र अशो शास्त्र शर्प शास्त्र सूपकार शास्त्र से आदि लेके धन प्राप्ति के उपाय बोधक शास्त्र अर्थ वेद हैं जी। धन पैदा करने वाला कहिए है धन प्राप्ति के सकल उपाय में निपुण पुरुषन को भी भाव बिना धन की प्राप्ति हुए नहीं। जानते अर्थ वेद का भी वैराग नहीं तात्पर्य है। तैसे चार वेदन के खाट अंग हैं शिक्षा और व्याकरण का भाग कल्प फिर है गया अंग सूत्र व्याकरण निरुक्त वेद बोध वास्ते जेडे शब्द है उन्होंने दी सारी उत्पत्ति बारे ज्योतिष पिंगल ये छह वेद के उपयोगी होने के वेद के अंक कही हैं। तिन शिक्षा का कर्ता पाननीय और वेद के शब्दन में अक्षरों के स्थान का ज्ञान और औदात अनुदात स्वरत का ज्ञान शिक्षा ते हुए है। उदात स्वर अनुदात स्वर स्वस्थ स्वरितक का स्वर ज्ञान शिक्षा दे हो गए वेदन में अनुख्यान रूप जो अनेक प्राप्ति प्राप्ति साख्यादि वेद का व्याकरण नाम ग्रंथ है सो भी शिक्षा के अंतर्भूत है। तैसे वेद बोध कर्म के अनुष्ठान की रीति कल्प सूत्रन ते जानी जावे है। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ऋत्वक कहिए है तिनके भिन्न भिन्न करने योग जो कर्म तिनके प्रकार के बोध कल्प सूत्र हैं। तिन कल्प सूत्रन के कर्ता कायत्यायन अशुभ लाए नादक मुनि हैं। जहां से कल्प सूत्र भी वेद के उपयोगी होने के वेद के अंग हैं तैसे व्याकरण के वेद के शब्दन की शुद्धता का ज्ञान हुए है। सो व्याकरण सूत्र रूप अष्ट अध्याय पाणिनि नाम मुनि ने किया है। कायत्यायन और पतंजलि ने तिन सूत्रन के व्याख्यान रूप वार्तक और पाश किए हैं और जो व्याकरण है तिनमें वेद के शब्दन का विचार नहीं जानते पुराण आदिकन में उपयोगी तो है परंतु वेद के उपयोगी नहीं और पाणिनि कृत है व्याकरण वेद के शब्दन की भी सिद्धि करे है जाते वेद का अंग है। तैसे जासकना मुनि ने त्रयोदश अध्याय रूप निरुक्त किया है। ग्रंथ का नाम तह वेद के मंत्रण में अप्रसिद्ध पदन के अर्थ बोध के निमित्त नाम रूपण किए हैं जाते वैदिक अप्रसिद्ध पदन के अर्थ ज्ञान में उपयोगी होने से निरुक्त भी वेद का अंग है। संज्ञा का बोधक जो पांचाध्याय रूप निकांतु नाम ग्रंथ जास्क ने किया सो भी निरुक्त के अंतर्भूत है और अमर सिंह हिम आदकन ने किए हैं तो संज्ञा के बोधक कोश हैं सो सारे निरुक्त के अंतर्भूत हैं। तैसे आदित्य गर्ग आदक कृत सूरज आदित्य ज्योतिष भी वेद का अंग है। काय के वेद कर्म के आरंभ में काल का ज्ञान चाहिए सो काल ज्ञान ज्योतिष ते हुए है जाते वेद का अंग है। और धर्म मीमांसा के द्वादश अध्याय में आपस में अर्थ का भेद है सो प्रश्न है जाते लिखा नहीं। और संकर्षण कांड पंचम अध्याय रूप जैमिनी ने किया है। तां के विखे उपासना कही है तां का भी धर्म मीमांसा में अंतर भाव है। तैसे